તારીખ 27/9/1990 શ્રી પદ્મનંદ પંચવિષ્ટિકાના અનિત્ય અનુપ્રેક્ષા ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 27.
इसका प्रयोग शाता के कारण में इतना सुलभ नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना अशाता के कारण आसान किया. प्रत्येक भिन्नता भाषमान हो गए फिर दूसरों के साथ कितना लगा रहने का सवाल हो. न्याय दिया है तस्मात परिचिंतनीयम अनेकम. तो आत्मा का परिचिंतन करना है, इसलिए विद्वानों को निरंतर उस आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहिए. जो आत्मा देश है भिन्न है, જો આ વિકલ્પ માં નહીં જાય તો બીજા વિકલ્પ માં જશે. વિકલ્પ કઈ બનવાનો નથી. જો એ દેહ થી છૂટવાના વિકલ્પ માં નહીં જાય તો દેહ થી બંધાવવાના વિકલ્પ માં તો ચાલી જ જવાનો છે. રોકાઈ પોતાને રોકી શકે, પોતે જ પોતાને રોકી દે છે. અનિવાર્ય પરિસ્થિતિ
ભૂમિ સર તો વર્તન
કરે એ ધ્યેયરૂપી ભૂમિ અસાધ્યા, એ ધ્યેયરૂપી ભૂમિ અસાધ્યા.
ગુજરાતીમાં જન્મભૂમિ લખે છે.
હા,
પરંપરા
લગ જાતી. एक दोष से अनेक दोषों की परंपरा, ऐसे कितने दोष ऐसे हैं जिस दोष होने से दोषों की परंपरा लग ही जाती है. जैसे पचन, एक दोष हुआ बहुत से दोष हो जाए. देहात्म बुद्धि हुआ बहुत से दोष हो जाए. गुरुदेव जी कहते थे कि तुमने पर में स्वेपना कर लिया तो आज तुम अहिंसा दीक्षा ग्रहण करके एक इंद्रिय की भी अहिंसा, दस की भी अहिंसा, स्थावर की भी अहिंसा का विचार करेगा कल तो कतल कतल खाना डालेगा. जब तुमने ये माना कि मैं इसको बचाता हूं तो कल तुम कतल खाना बनाने वाले. आज का बचाने वाला कल कतल खाना डाल. क्यों? क्यों उसने अपना पर में अपना अपना कर लिया, परमेश्वर पढ़ा किया. देह तो इतनी, देह का योग, काल योग जिसको कहते हैं, ऐसा एक घनिष्ठ संबंध है क्षीर निर्वत आत्मा के साथ. उसमें भिन्न पढ़ा कर लेना चाहिए. यहां से भिन्न पढ़ा दिया, एक राग से और एक शरीर से. अगर मिथ्यात्व अवस्था का अनुभव का अवलोकन करें, अब तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस अवलोकन में मैं देह वाला हूं ऐसा अनुभव हर समय चालू रहता है, और मैं राग वाला हूं ये अनुभव भी हर समय चालू रहता है. अवलोकन तो अनुभव को की तलाश करता है और अनुभव को ऑब्जर्व करता है. उसका उसको यहां पर अवलोकन कहते हैं. जैसे ज्ञाता प्रष्टा प्रणाली तटस्थ ज्ञान का पर्याय है, मध्यस्थ ज्ञान का पर्याय है, वैसे अवलोकन उसी जाति का एक ज्ञान का पर्याय है जो तटस्थ होकर सबको देखता है। तो इस अवलोकन तटस्थ होकर क्या देखा? श्री ज्ञानी ने ये कहा, श्री गुरु ने ये कहा कि देख तुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तो अवलोकन का कि मैं राग वाला हूं और मैं शरीर वाला हूं। तो अवलोकन करते ही उसको ज्ञानी के वचन के प्रति विश्वास आ जाएगा कि बिना अवलोकन मुझे ही इतना पता नहीं था कि मैं देह वाला और राग वाला हूं, ऐसा अनुभव समझ कर रहा हूं। मेरे रोग को बिल्कुल पॉइंट आउट करते हैं, बता देते हैं, निर्देश कर देते हैं कि देख तेरे में ये परिणाम चालू है कि नहीं है, अवलोकन करके ही पता चलेगा, अपना विपरीत भावों का भी पता चल जाएगा, तो विश्वास आएगा, तो इलाज बताएंगे वो सही होगा। जब रोग को सही बताया तो इसका इलाज पर भी विश्वास आ जाएगा। इसलिए वहां से एक जो आप पुरुष के प्रति जो विश्वास होता है यहां से चालू होता है। तो कहते हैं कि तू बिना देह बिना राग वाला तू ज्ञान स्वरूप ही हो। लंबी चौड़ी बात नहीं समझे, उतना समझे कि जब श्री गुरु इतना कहते हैं कि तू राग वाला नहीं देह वाला नहीं तू ज्ञान स्वरूप मात्र है। अगर अवलोकन से पता चलता है तो उसको लगता है कि श्री गुरु कहते हैं इससे मेरा अनुभव विपरीत चल रहा है, पर विश्वास जब श्री गुरु पर होता है तब उनको ये लगता है कि ये मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये बात इनके विश्वास करने लायक है। और वो भी अवलोकन से पता चलता है ज्ञान को प्रति समय मेरे में हो ही रहा है, जैसे राग हो रहा है वैसे ही ज्ञान हो रहा है, तो फिर मैं राग स्वरूप हूं ऐसा अनुभव क्यों और मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? जब दोनों भाव मुझे अनुभूत हो ही रहे हैं, मेरे अनुभव में आ ही रहे हैं, तो मैं एक को छोड़ के दूसरे को मैं अहंपना कैसे करता हूं, क्यों करता हूं? बस इधर ये मंथन का पहला स्टेज चालू हो जाता है। अवलोकन पूर्वक जो मंथन होता है वो वहां से चालू हो जाता है। फिर ये कोशिश करता है कि मेरी दुख की जड़ियां हैं कि देह में अपनत्व किया और राग में अपनत्व किया और ज्ञान में अपनत्व नहीं किया, अब मुझे मेरा अपनत्व मैंने मेरा अस्तित्व मेरी मौजूदगी देखनी है, कहने से माननी नहीं है लेकिन देखनी है। तो देखने के वो ढूंढता है कि जहां मैं मेरा मेरी मौजूदगी राग में और देह में कर रहा हूं वहां है कि नहीं है, क्या मेरी मौजूदगी ज्ञान में है? सोच करे, खोज करे, अवलोकन से खोज करे। जहां तक श्री गुरु कहते हैं ऐसा परिणाम नहीं आता है, मैंने ज्ञान में अपना अस्तित्व भाषित नहीं होता है, वहां तक खोजे। जैसे एक जिज्ञासा का पर्याय सत्य के लिए ज्ञान में अवकाश पैदा करता है, वैसा एक दूसरा पर्याय खोज का है। बनारसदास ने यह कहा कि वादी मरे खोजी जीवे, मैंने ये बच जाएगा। तो ये खोज का पहला जो स्टेज है खोज का ही अवलोकन से खोज करे मेरा अस्तित्व कहां है। श्री गुरु को करने कह दिया कि देख तेरा अस्तित्व तुझे ज्ञान में भाषित नहीं हो गए, वहां तक तेरी भूल है, तेरा हिसाब किताब सब खोटे के खोटे ही है। और जब तेरा अस्तित्व ज्ञान में भाषित हो गए तब तुम समझ लेना कि हमारे वचन में क्या रहस्य रहा है। हमारी बात में क्या लक्षण है पता चल जाएगा। तो ये खोज विषय, खोज करने वाले को इस स्टेज में, खोज करने वाले को कभी निष्फलता प्राप्त नहीं होती है। ये मार्ग की सुंदरता है, ये मार्ग की सरलता है, ये मार्ग की सुगमता है कि यहां खोज करने वाले को अपने ज्ञान में अस्तित्व होने से और ये अस्तित्व वेदन भूत रूप से वेदन में आते होने से सहज रूप से मिल जाता है और अपनी भ्रांति का पता चलता है कि राग में और विनी में अहमपणा होता था, अस्तित्व मालूम पड़ता था। एक बहुत बड़ी गलती थी, एक गलती भूल समझ में आती है, लेकिन खोज से समझ में आती है। बिना खोज ये बात समझने की नहीं है, कहने से समझने की नहीं है, सुनने से समझने की नहीं है, यदि विचारने से भी समझने की नहीं है, खोज से समझने की नहीं है। क्योंकि विचार में ये बात बहुत बहुत बार सामने आ चुकी है कि देह को आत्मा नहीं है, राग को आत्मा नहीं है, ये बात विचार में बहुत बार आती हुई भी है। प्रतीति तो तब आएगी जब चीज नजर में प्रत्यक्ष आएगी, तब अवलोकन में तो चीज सामने आ जाती है, ज्ञान के सामने आ जाती है। इसलिए वहां प्रतीति पूर्वक विचार होता है, अवलोकन का विचार प्रतीति पूर्वक होता है, बिना अवलोकन वाला विचार प्रतीति एवं विरुद्ध प्रतीति समेत रहता है। इसलिए ये विचार कामयाब नहीं होता। इसलिए दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में जब साधन साध्य की चर्चा करी तो ऐसी बात कही कि प्रतीति सहित विचार अनुभव का कारण है। प्रतीति सहित के विचार क्योंकि बोलो अवलोकन भी विचार की भूमिका साथ चलता है, तो प्रतीति समेत विचार साधन है और अनुभव साध्य है। तो अनर्थक से निकाले कि बिना प्रतीति या विपरीत प्रतीति सहित विचार वो साधन नहीं है जिससे अनुभव साध्य हो, ये यहां से निकल जाता है, दोनों सिद्धांत आपस में खड़े हो जाते हैं।
अवलोकन की जो मृत्यु कहते पति भी सही कर विश्वास है, ध्वज निर्मित
हाँ देखने में चीज आई, एक बात हमने नजर और नजर देखे फिर अविश्वास कैसे करें। कानों कान सुने, सुनाई किसी की बात आ जाए इनडायरेक्ट
हो इसमें
तो उसमें शंका रहती है कि भाई क्या मालूम हमने तो नहीं सुनी, हमने तो नहीं देखी। वो कहता है क्या कहेंगे, वो कहता है मैंने देखे नहीं मैंने सुनी, लेकिन जब देखी और सुने फिर उनको पुरावा की जरूरत नहीं है, ये बात कही कि नहीं कही ऐसे बात कर। इसलिए विश्वास है अब लोग तो चीज सामने है। इसलिए अपने भेद ज्ञान के प्रकरण में वो बात ली है कि भेद ज्ञान में ज्ञान स्वतः प्रकाशक होने से पदार्थ पर पदार्थ का पर पदार्थ प्रणाम ध्यान में आता है, स्व और पर दोनों ज्ञापक को प्रकाश में वाला ज्ञान में स्व का स्वपना और पर का परपना देखने में आता है। जब स्व और पर का पर स्वपर भिन्नता समझ में आता है, ज्ञान में आता है, तो अब अनुभव में उसको लेना है। एक जानने में आया अब अनुभव में लेना है, वेदन में लेना है, तो दूसरे पदार्थ को वेदन कर ही नहीं सकते। वेदन तो ज्ञान का ही हो सकता है और ज्ञान में ज्ञान वेदन के अलावा दूसरा वेदन की कोई गुंजाइश भी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं। ये भी अवलोकन से पता चलता है, वेदन कभी परोक्ष होता नहीं, वहां से प्रत्यक्षता का पॉइंट मिल जाता है। जो अनादि से छिपी हुई बात है तो वो है कि प्रत्यक्ष चीज नहीं हुई, स्वभाव प्रत्यक्ष होने पर भी अपनी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षता को प्रत्यक्ष तौर से कभी देखी नहीं। अब प्रत्यक्षपणा भाषित हो गया तो ये प्रत्यक्षपणा परोक्षपणा कहां तक टिकेगा, जिसे अपना प्रत्यक्षपणा जिसे भाषित हो गया उसको अपना पोषपणा कहां तक टिकेगा, कैसे टिकेगा, टिकने का कौन आधार है, कौन स्थान है, बात खत्म होगी। इसलिए वो अत्यंत प्रत्यक्ष अनुभव में आने का जो पूर्व भूमिका है वो मिल गया है, पहले ही आ जाता है।
नेपाल प्रकाशक स्वच्छता को सूचित करता है और स्वयं की उपस्थिति व्यापकता को सूचित करती है। जहाँ व्यापकता है पकड़ में आती है,
व्यापकता से वेदकता को, वेदकता से व्यापकता को भी पकड़ लेना, वो तो परस्पर साथ में रहे, जितने में वेदन है उतने में ही मैं
जनरल,
और जितने में ज्ञान हो उतने में मैं व्यापित हुआ हूँ, राग में ज्ञान नहीं है तो राग में मेरी व्याप्ति नहीं
जी बराबर।
मेरे समकाल में एक पर्याय में राग और ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर भी ज्ञान में राग की व्याप्ति नहीं, राग में ज्ञान की व्याप्ति नहीं, तो जो परपना जाना वो व्याप्ति से तो पक्का हो गया, तो वहां तक तो जानने की बात हो गई। तो वेदन को किस चीज को लेते हैं, वेदन से भी देखे तो जहां तक मेरा ज्ञान है उतना ही मेरा वेदन है, राग में वेदन नहीं है, राग को वेद नहीं सकता, जैसे कर नहीं सकता वैसे भोग नहीं सकता, वो तो एकत्व होने से ही कर्ता भोगता पड़ा होता है, जो मिथ्या है वास्तव में है ही नहीं उसको मिथ्या कहते, यहां से वेदकता तक पहुंच सकते हैं, भिन्नता जाने या फिर व्यापक रूप से उसको जाने, फिर वेदकता से उसको वेदे, तो यहां से अनुभव की लाइन जो है उसका अनुसंधान वेदकता से होता है।
बताइए अवलोकन से कहाँ पहुंच गया, कारण अवलोकन से,
तो इसलिए उसको अनुभव पद्धति कहते हैं, कार्य पद्धति को अनुभव पद्धति कहते हैं, यही अभिप्राय है कि अनुभव का अनुसंधान यहाँ से आता है, अवलोकन खुद अनुभव को ही अवलोकन करता है कि राग का अनुभव में अस्तित्व है कि नहीं, ज्ञान के अनुभव में अस्तित्व है कि नहीं,
अस्तित्व है व्यापकता,
अस्तित्व नहीं मैं पढ़ा, अहम पढ़ा जिसमें होता है, अहम पढ़ा होने से ही मुख्यता आती है, इसके बिना अनादि काल से राग ही मुख्य रहा, इसका कारण यही है कि राग में अहमपना रहा, मेरे में ही मुझे रस है, ये सारा इधर दिखता है कौन सा रस आता है इसमें यहां से देखो तो एक दृष्टिपात में सारा स्थिति दिखता है, क्या रस आता है, क्योंकि वो तो गांव ही मेरा नहीं, अगर मेरा गांव होता तो थोड़ा भी रस आता, ये मेरा गांव है मेरा गांव इधर है, लेकिन ये तो इधर है रस ही नहीं आएगा, उनको तो कसाई की मुद्दता बहुत हुई, आज तो किसी में उसका सहस्त्रांश भी नहीं दिखे, 1000वां भाग भी नहीं दिखे, उतना वो कसाई की मंदता में रहता है, लेकिन जो भूल होती है वो संतुष्ट हो गई, वहां भी उसको संतुष्ट हो गया है, मैंने स्थूल बंध के परिणाम कसाई की मंदता कितनी भी हो लेकिन ये बंध के स्थूल परिणाम है, स्थूल परिणाम में पूर्ण विराम आ गया, सूक्ष्मता में जाने का उसका दरवाजा
संतोष
है, इसलिए यही पर्याय दृष्टि को दृढ़ करता है, वहां पर्याय ढा पर समाया कि किसी भी पर्याय में हमें संतुष्ट होना ही नहीं, पूर्ण होगा तो भी नहीं, ये तो अपूर्ण है और अशुद्ध है, लेकिन जब पूर्ण पर्याय में संतोष नहीं होने का है तो फिर अपूर्ण और पर्याय को संतुष्ट होने का सवाल क्या से आएगा, ये बात लिखी कि पूर्ण पर्याय हुई वो भी हमारा वेश नहीं है, अपूर्ण पर्याय तो हमारा वेश नहीं है, शुद्ध आत्मा को कोई पर्याय वेश होता ही नहीं ऐसा करते हैं, इसलिए मोक्ष पर्याय मोक्ष का वेश भी चला गया समझा, तो पर्याय तो पूर्ण होगी मोक्ष तक वो प्राप्त हो गया, क्योंकि इसमें क्या नया हुआ, मेरा सवाल है, उसमें कौन सी नवीन बात है? जब एक पिता से पुत्र को इनकी वारसा में, वारसा कहते हैं, एक चीज मिल जाती है, अगर कोई उसको अभिनंदन देने को जा रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारा पिता का संपत्ति तुमको वारसा में मिलेगी, तो वो क्या कहेगा? कि क्या बात करते हो, ये तो मेरा अधिकार है, दूसरे की थोड़ी मेरी है, मेरे पिता की मुझे मिल गई, इसमें कौन सा अभिनंदन की बात है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। तो ये मोक्ष पर्याय तो है, उसको द्रव का अधिकार है, तो उसमें कौन सी नई बात है? तो इसलिए सोगानी जी ने कहा कि ऐसे मुक्त पर्याय का अभिनंदन देना, ये तो गाली देने के बराबर बात है, ये तो इसका अपमान है।
पत्नी से पुरुष की
ज्यादा ही परमात्मा प्रकाश में से ये बात निकली है, जो भी प्राचार में ये बात है कि मूल स्वरूप से तो बंधा हुआ ही नहीं था। जब तू ही बंधा नहीं है तो फिर बंधन से मुक्त होने के बाद कहां से आए? जेल में गया तो जेल से छूटा, लेकिन जो सज्जन ने अपराध नहीं किया, जो जेल में कभी गया नहीं, उसको छूटने के लिए कहा क्या करे? गाय नहीं जा सकता, ऐसे दृढ़ दृष्टि की बात हुआ।
और ये संतुष्ट पना जैसे हुआ तो वो फिर और दूर चला गया, तीव्र हो गया, तो अपना जो स्वीकार करना था उससे और दूर चला गया,
दूर चला गया, उन्मुख गया, जिस रास्ते पे चलना चाहिए इस विरुद्ध रास्ते पे चाल हुए परिणाम विमुख रास्ते।
उठे छे बिना करता जाने दे बतु उपलब्धि करी हुई वो भाव नहीं देते हैं पुत्र में छे नहीं तो पुत्र छे में करता बिजी पूंजी में भी हुए
गुरुदेव कहते थे बहुत सुंदर प्रश्न कि आत्मा है सो तीन लोग का नाथ है, आत्मा है सो परमात्मा है और वो तो तीन लोग का नाथ है, और जीव ने क्या काम किया, वो छोटे छोटे गांव में क्या होता है, साधारण लोग साधारण मैंने आर्थिक स्थिति से साधारण होते हैं, इनके घर से छोटे छोटे बच्चियां लड़कियां होती है 10-12-15 साल, वो गांव के बाहर जाती हैं और एक अच्छा गाय का वो भैंस का जो पोजला है बिस्टा जिसको बोलते हैं
गोबर
गोबर वो अच्छा सा मिल गया तो खुश खुश हो जाती है, तो अच्छा चलो एक मिल गया सारा मेरा जो सुमला क्या बोलते हैं सुमला लकड़ी का जो बदला है हमारे बाबू ला के
अच्छा भाई
वो भर गया मेरा का टोकरी
टोकरी
तो एक गोबर से मेरी टोकरी भर गई खुश हो जाती है। बस ये आत्मा को थोड़ा पैसा मिल गया थोड़ा परिवार मिल गया यही हालत है, थोड़ा शरीर अच्छा मिल गया सुंदर, थोड़ी संपत्ति मिल गई, थोड़ा परिवार मिल गया, फिर जैसे गोबर में खुश होते हैं वैसे ये तीन लोग का नाथ जो है गोबर खुश हो गया। गुरुदेव तो दृष्टांत दे रहे
हैं,
ज्ञान का क्षोक्षम यही गोबर है इनका, ये निवृत्ति लेकर के सौंदर्य में बैठ करके फिर ज्ञान का सूक्ष्म बढ़ाया थोड़ा शास्त्र का और संतुष्ट हुआ, वो भी गोबर में ही संतुष्ट हुआ। ऐसा ही हल्की जीत में बड़ा आदमी खुश हो जा रहा है, ऐसी बात है, राजा होकर के फिर गोबर में खुश हो जा रहे थे तो राजा के भान में तो नहीं है, अवश्य उसने मदिरा पी ली जभी उनको ये अच्छा लगता है।
दस वर्ष नहीं पकड़ा हुआ तो इस पर नाम से पकड़ा सकते
हैं, दर्शन वो है उस स्वरूप का भान भुलाने वाले परिणाम है, वो सबसे सर्वोत्कृष्ट महान होने पर भी यही हालत बना रखी।
आपको क्षमा दे समझण मुझे लिखो ये वेद मिसाल है।
वहां तो होगा होगा उसको मान लिया ना, तो ज्ञान नहीं उसको ज्ञान माना, धर्म नहीं उसको धर्म माना, जैसे पुण्य में वैसे ज्ञान नहीं उसको ज्ञान माना, उपाय नहीं उसको उपाय माना, साधन की भूल भी होती, साध्य की भी साधन की भूलों में से साध्य की भूल तो अवश्य होगी ही होगी, कौन सी चीज बाकी रहे पूरी की पूरी भूल 100%।
एक मिठाई की सीमा तो बहुत मोटी है,
रास्ते से चलने को निकले तो वहां कहां कांटा चुभेगा, कहां पत्थर आएगा, कहां खड्डा आएगा, सब बात देखनी पड़ेगी। छठा श्लोक सातवां है, उदीति पाताय रवीर यथा तथा शरीरम नेतन ननु सर्वदेहिया स्वकालम आसाद्य निजेति संस्थिते करोति कह शोक मतः प्रबुद्ध देही। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के लिए उदय होता है, ये दृष्टांत दिया जो अपने बात सुनना है, जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के लिए ही उदय होता है, उसी ही प्रकार यह शरीर भी निश्चय से नाश होने के लिए ही उत्पन्न होता है, शरीर की उत्पत्ति ही इसके नाश होने के लिए है, इसलिए स्वकाल के अनुसार अपने प्रिय स्त्री पुत्र आदि के मरने पर भी हित हित के जानने वाले मनुष्य प्रबुद्ध ही ऐसा लिया है, प्रबुद्ध ही प्रबुद्ध मैंने ज्ञानी दी मैंने उसकी बुद्धि ऐसी ज्ञान ऐसा है, हित हित के जानने वाले मनुष्य कदापि शोक नहीं करते। सारी दुनिया जिस प्रश्न पर शोक करती है, ज्ञानी वहां शोक नहीं करते। इस प्रश्न की जैसे माता को पुत्र का जन्म होता है, जन्म होने के बाद वो अपने गोद में लेती है, तो इस पुत्र को इसके प्रथम ही अनित्यता ने अपनी गोद में ले लिया है। माता अपने पुत्र को अपनी गोद में लेती है, उसके पहले ही अनित्यता ने अपनी गोद में ले लिया है, ज्ञान का ज्ञान है, तो अनित्यता को कहां से देखते हैं, तो जन्म के होते ही अनित्यता साथ में पैदा हो ही गई, जन्म पहले हुआ और अनित्यता बाद में वो बात नहीं है, दोनों का एक साथ ही पैदा हुआ है, बाकी दृष्टांत बार बार होते हैं। मतलब ये मिल गया उसका जो हर्ष है वो शुरू से ही ज्ञानी के ज्ञान में नहीं रहा, तो फिर उसका जो वियोग है उससे दुख होने वाला है। मैंने मृत्यु में उसी को ही दुख होता है या शोक होता है मृत्यु के कारण, जिसमें इनकी मौजूदगी में जो इसको मिठास कहते हैं का वेदन किया, मिठास का वेदन ये एक एक्शन है जो वियोग का दुख का रिएक्शन को रोक नहीं सकता। अंग्रेजी में कहवत है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ये समांतर भी रहता है परस्पर विरुद्ध रहता है, समांतर रहता है पर विरुद्ध रहता है। तो जिस पुत्र की मौजूदगी में मिठास रखे, ये मेरा पुत्र है, अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है, उसके व्यू में दुख का शोक का रोकना अनिवार्य है, होगा ही होगा। जब मिठास लेते हैं उस वक्त पता नहीं चलता है, सारा जीवन पर्यंत उसकी मिठास का वेदन कर देता है। एक क्षण तो आने वाली है ही, वियोग होने की क्षण तो निश्चित ही है, या तो खुद को जाने का है या उसको जाने का है। उस वक्त ये बात खराब हो जाता है, दुख का पृथक्करण करे, एनालिसिस करे तो पता चल जाए दुख क्यों हुआ, दूसरे को क्यों नहीं हुआ, पड़ोसों को भी पता है कि ये जा रहा है रुक गया, इसको क्यों नहीं हुआ, उसमें तो मिठास वेदी नहीं, मिठास का वेदन, मिठास का वेदन किसने किया, उनको ही दुख होने। जो पैदा होता है वो नियम से नष्ट होता है, जब स्त्री पुत्र आदि का शरीर पैदा हुआ है तो अवश्य ही नष्ट होगा, आत्मा का तो नाश हो ही नहीं सकता, ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष मैंने ज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र आदि के लिए किंचित भी शोक नहीं करते, उनको शोक होता ही, वो तो जानता है कि इसकी आत्मा है, उसका तो नाश नहीं हुआ है, उसने क्षेत्रांतर अवश्य किया है, लेकिन क्षेत्रांतर तो होता ही रहता है, वैसे ही कोई हाथ पकड़ करके 24 घंटे को तो बैठता नहीं है, फिर भी कल्पना यहाँ एक दूसरी हो जाती है कि मर गया, वास्तव में तो मरा ही नहीं, कोई नहीं मरता, तो शास्त्र ये सिद्धांत ज्ञान का विषय, टिकने के लिए सिद्धांत ज्ञान चाहिए, शोक नहीं करना ये उद्देश्य है, और शोक नहीं करने में टिकना इसके लिए सिद्धांत चाहिए। एक को पकड़े दूसरे को छोड़ देंगे ये काम कभी होने वाला नहीं, दोनों एक दूसरों से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक सिक्का के दो बाजू हो, अलग हो ही नहीं सकते, एक सिक्का मिले और दो बाजू दूसरी साइड नहीं हो गए, बन ही नहीं सकते।
जैसे अभी हम हीटर आए, हीटर आए तो घर में विश्वास है कि वापस आएंगे, और मृत्यु के बाद में वो विकल्पना
है वापस है वापस नहीं आएंगे, ऐसा विश्वास कोई पक्की बात है क्या?
इससे वहां दुख नहीं होने का कारण तो वही है,
लेकिन ये विश्वास कितना पोकल है, कितना पोला है, कोई गारंटी है क्या? गारंटी तो नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बात तो एक कल्पना मात्र है, विश्वास भी एक कल्पना है और अविश्वास भी एक कल्पना है। हम लोग आए मान लिया आत्मा में क्या आया, वापिस आए में आत्मा में क्या आया, ज्ञान स्वरूप ही रहता है जो आत्मा, इसमें क्या आया, पर नहीं आया तो ज्ञान स्वरूप ऐसे स्वरूप में से क्या गया, देखना तुम्हारा है, हम लोग को तुम्हारा करना है, लेकिन नहीं आया तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको बड़ा भारी कर दिया है, हर एक अपने पुण्य के उदय के अनुसार ही संयोग में चले, ऐसे भी हमने दृष्टांत देखे कि एक स्त्री को छोटी उम्र में इसका आधारभूत पति कहा जाता है ना, वो चले जाने से इसकी स्थिति अच्छी हो गई हो। पति होने से तो ये जितना कमाता था उतना ही खाता था, हमने बहुत कमजोर परिस्थिति में, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। अब क्या हुआ, एक बाजू तो उसका पति गया, दूसरे बाजू उसका पूजिता होने चालू हुआ। तो समाज ने ये सोचा कि बेचारी क्या करेगी, निराधार हो गई है। तो उतना लोगों ने दे दिया कि इसके जीवन में पति परिश्रम करके मर जाता तो उतनी संपत्ति नहीं होती। देखिए इसका पुण्य था तो इसके भी ज्यादा हो गया, उसको आधार जीने के लिए आजीविका का प्रॉब्लम तो आजीविका का होता है
मुख्य प्रॉब्लम,
मुख्य प्रॉब्लम ये ऐसा हो जाता है। ये तो पुण्य के उदय के अनुसार सब होता है। वो मानता है कि मैं हूँ तो उसका आधार है, मैं नहीं हूँ तो उसका आधार भी नहीं है।